آگے دیکھیے سبق بھائی. وَإِنَّمَا قَالَ لَفْظٌ وَلَمْ يَقُلْ لَفْظَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الْوَحْدَةَ وَالْمُطَابَقَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ لِعَدَمِ الْإِشْتِقَاقِ مَعَ كَوْنِ اللَّفْظِ أَخْصَرَ. اچھا بھائی, ہم کلمہ کی تعریف پڑھ رہے تھے بھائی. کلمہ کی تعریف کی صاحب کافیہ نے الکلمتو لفظوں وزع لمعنی مفرد. گزشتہ سبق کے اندر یہ لفظوں کے بارے میں تفصیل ہم نے پڑھی تھی بھائی, اور ملا جامی رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ عربی زبان میں لفظوں کا معنی ہے پھینکنا. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو مصدر ہے اور مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں, کیونکہ الکلمہ وہ ذات کا نام ہے اور لفظ کیا ہے, مصدر ہے, وہ صفت ہے, اور مصدر کا خارج میں وجود نہیں ہوتا, تو ذات پر مصدر کا حمل صحیح نہیں. جیسے زیدن عدلن, زید ذات کا نام ہے اور عدل وصف ہے, مصدر ہے انصاف کرنا, اور ذات پر مصدر کا حمل صحیح نہیں. کہ یہاں یہ لفظ کا لغوی معنی تو ہے پھینکنا, لیکن یہاں لفظ کا لغوی معنی نہیں مراد بلکہ اصطلاحی معنی مراد ہے, اور اصطلاحی معنی ہے اس کا ما یتلفظ به الانسان, جس پر انسان تلفظ کرتا ہے. یہ جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں یہ کیا ہیں, لفظ ہیں بھائی, لفظ. اور یہ تو ذات ہے, لہذا اس کا حمل الکلمہ پر صحیح ہے. اور اس میں پھر انہوں نے دو صورتیں ذکر کی کہ لفظ ان کا لغوی معنی کیا تھا, پھینکنا, اور پھر اس کو نقل کیا گیا کس معنی کی طرف, ما یتلفظ به الانسان, جس پر انسان تلفظ کرتا ہے. تو اس میں دو احتمال ہیں, یا تو لفظ ان کو براہ راست ما یتلفظ به الانسان کی طرف نقل کیا گیا, یا پہلے اس کو ملفوظ کے معنی میں کیا گیا اور پھر اس کو دوبارہ نقل کیا گیا کس کی طرف, ما یتلفظ به الانسان کی طرف. تو یہ لفظ جو ہے یہ ہوا منقول بھائی, لفظ کیا ہے, منقول ہے. پہلے اس کا معنی کیا تھا, پھینکنا, یعنی لغت میں معنی کیا, پھینکنا, اور پھر نحویوں کے نزدیک معنی کیا ہوا, ما یتلفظ به الانسان. تو یہ لفظ ہوا منقول. تو جو پہلا معنی ہے اس کو کہیں گے منقول عنہ, اور جو دوسرا معنی ہے اس کو کہیں گے منقول الیہ, منقول الیہ. تو یاد رکھو, منقول عنہ اور منقول الیہ دونوں کے اندر مناسبت ہونی چاہیے, اور جتنی زیادہ مناسبت ہوگی اتنا ہی پسندیدہ ہے بھائی, اتنا ہی پسندیدہ. تو یہاں پر دو احتمال ہیں, یا تو لفظ کو براہ راست نقل کیا گیا ما یتلفظ به الانسان کی طرف, یا اس کو پہلے ملفوظ کے معنی میں کیا گیا اور پھر یہ لفظ جو ملفوظ کے معنی میں تھا اس لفظ کو دوبارہ نقل کیا گیا کس کی طرف, ما یتلفظ به الانسان کی طرف. توجہ ہے, لفظ وہی ہے, لفظ میں تبدیلی نہیں آ رہی, معنی سے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف ہم اس کو نقل کر رہے ہیں. پہلے وہی لفظ کس معنی میں تھا, پھینکنے کے معنی میں, پھر اسی لفظ کو نقل کر لیا اور کیا معنی کیا اس کا, ملفوظ, تو ملفوظ کے معنی کی طرف اسی لفظ کو نقل کیا, پھر دوبارہ اسی لفظ کو نقل کیا اور کس معنی میں کر لیا, ما یتلفظ به الانسان. تو یہ نقل لفظ ہو رہا ہے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف. تو یہاں پر دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ براہ راست نقل ہو, اور ایک یہ کہ دو مرتبہ میں نقل ہو یہاں پر. تو دونوں صورتوں میں من وجہ حسن بھی ہے اور من وجہ قبح بھی, یا یوں کہو دونوں وجہ من وجہ اچھی ہیں. بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلی وجہ اچھی, اور بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسری وجہ اچھی ہے. اسی طرح دیکھا جائے تو بعض اعتبار سے پہلی وجہ میں کچھ خرابی ہے, اور دوسری طرف دیکھا جائے تو دوسری وجہ میں بھی کچھ خرابی ہے, یعنی کچھ برائی ہے یا کچھ کمی ہے بھائی. پہلی وجہ کیا تھی کہ لفظ کو براہ راست نقل کر لیا کس کی طرف, ما یتلفظ به الانسان. تو پہلا معنی کیا تھا, پھینکنا, اور دوسرا معنی کیا, ما یتلفظ به الانسان, جس پر انسان تلفظ کرتا ہے, یعنی یوں کہو وہ لفظ جو انسان منہ سے پھینکتا ہے, یا آسان لفظوں میں کہو پھینکی ہوئی چیز, پھینکی ہوئی چیز. تو پہلا معنی کیا, پھینکنا, دوسرا معنی کیا, پھینکی ہوئی چیز. تو لفظ تو پھینکنے کو کہتے تھے, پھر یہی لفظ کس کو کہنے لگے, پھینکی ہوئی چیز کو. تو اس کو کہتے ہیں تسمیت المسبب باسم السبب, پھینکنا سبب ہے پھینکی ہوئی چیز کا. آپ کوئی چیز پھینکیں گے تو وہ پھینکی ہوئی کہلائے گی, तो फेंकना क्या है सबब, और फेंकी हुई चीज क्या है मुसबब। तो फेंकी हुई चीज यानी वो जो लफ्ज है उसको ही लफ्ज कहने लग पड़े, तो मुसबब को नाम दे दिया लफ्ज का, हालांकि लफ्ज तो किसका नाम था सबब का। फेंकने का नाम क्या था लफ्ज, फेंकने को क्या कहते थे लफ्ज कहते थे, और फेंकी हुई चीज को वही लफ्ज कहने लगे। दो मुसब्बब है उसको नाम दे दिया सबब वाला, तो इसको कहते हैं तस्मियतुल मुसब्बब बिस्मे सबब। तो यहां दोनों में मुनासिबत बईदा है, यानी मनकूल अनहू और मनकूल इले, ये जो दो मानी है इनमें क्या है मुनासिबत बईदा है। मुनासिबत तो है, मुनासिबत तो है, कोई चीज फेंकेंगे तो वो क्या हो जाएगी फेंकी हुई होगी, मुनासिबत तो है लेकिन करीब वाली मुनासिबत नहीं है। करीब वाली मुनासिबत क्यों नहीं है, मैंने वजह भी जिक्र की थी, इसलिए क्योंकि सबब और मुसबब दोनों का एक दूसरे पर हमल नहीं होता। जैसे जैसे नमाज के लिए सबब क्या है वक्त है, तो यूं कहा जाए अल वक्तु सलातुन, वक्त को बनाओ मुब्तदा और सलात का करो उस पर हमल, ये हमल सही नहीं, वक्त नमाज है भाई, ये तो बात दुरुस्त नहीं है। या इसका अक्स कर लो, मुसबब को क्या बना लो, तवज्जो है, वक्त है सबब और नमाज है मुसबब, तो आप पहले तो सबब को बनाओ मुब्तदा और मुसबब को क्या बनाओ खबर, अल वक्तु सलात, वक्त क्या है नमाज है, ये बात नहीं बनती। इसका अक्स कर लो, आप मुसबब को मुब्तदा बनाओ और सबब को क्या बनाओ खबर बनाओ, तो भी बात दुरुस्त नहीं। अस्सलातु वक्तुन, नमाज वक्त है, ये बात भी दुरुस्त नहीं। दोनों में मुनासिबत तो है, एक सबब है एक मुसबब, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं होते, सबब पर मुसबब का हमल सही नहीं और मुसबब पर सबब का हमल सही नहीं, दोनों में इत्तेहाद नहीं होता, दोनों इकट्ठे नहीं होते, सबब अलग चीज है और मुसबब अलग चीज है। तो यहां मुनासिबत बईदा है, अलबत्ता इस ये अच्छा है बई एतबार कि यहां नकल एक ही दफा पाई गई, बराह रास्त फेंकने से किस माना की तरफ नकल कर लिया माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान, तो नकल में तो तादुद नहीं, अलबत्ता वो दोनों माना के अंदर जो है वो मुनासिबत बईदा है करीबा नहीं। तो ये तस्मियतुल मुसब्बब भी इसमें सबब की कबील से है। और अगर दूसरे इहतिमाल को लिया जाए कि लफ्ज़ को पहले किस माना में ले लिया मलफूज के माना में और फिर इसको किस माना में ले लिया माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान, तवज्जो से सुनो, यहां दो नकल हैं, लफ्ज वही है माना बदल रहा है, पहला माना क्या था फेंकना, फिर दूसरा माना की तरफ नकल कर लिया, अब क्या माना है मलफूज यानी फेंकी हुई चीज, और ये फेंकी हुई चीज आम है, चाहे हाथ से फेंकी हो चाहे मुंह से फेंकी हो, तो अब ये जो लफ्ज जो मलफूज के माना में था इस लफ्ज को नकल किया किसकी तरफ माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान की तरफ, तो वो लफ्ज जो मलफूज के माना में है उसको नकल किया है माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान की तरफ। अब इनमें मुनासिबत करीबा है भाई, तो इसमें बुराई तो है खराबी तो है बाई लिहाज कि नकल दो दफा पाई गई, पहले लफ्ज को नकल किया किस माना की तरफ मलफूज की तरफ, और फिर इसी लफ्ज को जो मलफूज के माना में था नकल किया माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान की तरफ, तो तादुद नकल आया, नकल दो दफा आई, नकल ज्यादा हो तो यह पसंदीदा नहीं। लेकिन ये जो नकल किया माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान की तरफ, कौन से लफ्ज को नकल किया, जो फेंकने के माना में था या मलफूज के माना में था, हाँ दूसरे तरीके में जो मलफूज के माना में था उसको क्या किया है, देखो ना पहले लफ्ज को लफ्ज का माना क्या था फेंकना, फिर इसको लफ्ज को नकल कर लिया किस माना की तरफ मलफूज के माना, तो ये लफ्ज जो मलफूज के माना में है इसको अब नकल किया है किसकी तरफ माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान की तरफ, तो अब देखो ये लफ्ज जो मलफूज के माना में है मलफूज के माना में था इसको नकल किया है, तो यहां मनकूल अनहू कौन सा माना है मलफूज, और मनकूल इले किस माना की तरफ नकल किया माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान, तो मलफूज और माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान में मुनासिबत करीबा है, क्योंकि मलफूज का माना भी फेंकी हुई चीज और माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान का माना मुंह से फेंकी हुई चीज, तो जो मुंह से फेंकी हुई चीज है वो भी फेंकी हुई चीज है या नहीं, वो भी फेंकी हुई चीज है, तो देखा मलफूज का माना था फेंकना, वो आम था चाहे हाथ से फेंकी जाए चीज चाहे मुंह से फेंकी जाए, और यही लफ्ज उठाकर इस्तेमाल कर लिया नकल कर लिया माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान की तरफ, तो मलफूज का माना भी फेंकी हुई चीज चाहे हाथ से फेंकी हो चाहे मुंह से फेंकी हो, तो मलफूज हुआ आम और इसी की एक किस्म क्या बन गई, माया तलफ़ुज़ु बिहिल इंसान। जैसे देखो एक है हैवान और एक है इंसान, हैवान आम है उसमें इंसान भी दाखिल और गाय बैल बकरी भी दाखिल, और इंसान क्या है खास, वो भी इस हैवान के अंदर दाखिल है। इसी तरह मलफूज उसका माना कोई भी फेंकी हुई चीज, और माया तलफ़ुज़ु बिहिल इंसान ये भी क्या है फेंकी हुई चीज, तो ये मलफूज के अंदर ही दाखिल है। तो मलफूज हुआ आम और माया तलफ़ुज़ु बिहिल इंसान हुआ खास, तो यह हुआ तस्मियतुल खास भी इस्मिल आम, यानी खास को आम वाला नाम दे देना। माया तलफ़ुज़ु बिहिल इंसान इसको क्या नाम दिया, लफ्ज, और लफ्ज तो किस माना में था मलफूज के माना में, तो लफ्ज तो था आम, इसको किसके लिए खास कर लिया, माया तलफ़ुज़ु बिहिल इस्लाम, लफ्ज तो था मलफूज के माना में जो कि आम माना था, और फिर इसको किस माना में कर लिया, माया तलफ़ुज़ु बिहिल इंसान जो खास माना है, तो आम वाला लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल कर लिया, खास के लिए। या यूं कहें आम वाला नाम किसको दे दिया, खास को दे दिया। तो यह तस्मियतुल खास भी इस्मिल आम की कबील से है। तो पहले तरीके में हुसन क्या है कि वहां तअद्दुद नकल नहीं, लेकिन माना मनकूल अनहु और मनकूल इले में मुनासिबत बईदा है। और ये जो दूसरा तरीका है, दूसरा इहतमाल है, इसमें तअद्दुद नकल है, बई एतबार इस ये खराबी है, लेकिन बई एतबार ये अच्छा है कि मनकूल अनहु और मनकूल इले इन दोनों माना में क्या है मुनासिबत करीबा है। तो इनमें मुनासिबत करीबा है, मुनासिबत करीबा है। और मुनासिबत करीबा किस तरह है, वहां सबब और मुसबब थे, सबब का हमल मुसबब पर नहीं हो सकता था और मुसबब का हमल सबब पर नहीं हो सकता, और यहां खास और आम है। लफ्ज बमाने मलफूज यह है आम, और लफ्ज बमाने माय तलफ़ुज़ु बिहिल इंसान यह है खास। तो आम वाला नाम किसको दे दिया, खास को। तो यहां पर आम और खास हैं, मनकूल अनहु माना क्या है आम, और मनकूल इले माना क्या है खास, और खास और आम में एक जानिब से हमल हो सकता है। सबब और मुसबब में तो किसी तरफ से हमल नहीं हो सकता था, किसी को भी मुब्तदा बनाओ दूसरे को खबर नहीं बना सकते थे, लेकिन यहां अगर यूं कहें अल इंसानो हैवानुन, इंसान को बनाया मुब्तदा और हैवान को क्या बनाया खबर बनाया, इंसान है खास और हैवान है आम, तो खास को बनाया मुब्तदा और आम को बनाया खबर, यह हमल सही है। इन अल इंसान हैवान, इंसान हैवान है आप सब जानते हैं, लेकिन इसका बराक्स नहीं है, हैवान को मुब्तदा बनाओ और इंसान को क्या बनाओ खबर बनाओ, अल हैवान इंसान, हैवान क्या है इंसान, नहीं भाई तमाम हैवान तो इंसान नहीं है। तो यहां एक जानिब से कम अज कम हमल ठीक हो जाता है आम और खास के अंदर, यानी आम का हमल खास पर ठीक हो जाता है, जबकि वहां सबब और मुसबब में किसी जानिब से भी हमल सही नहीं होता था। तो वहां वो मालूम हुआ वहां मुनासिबत दूर की है और यहां मुनासिबत करीब की है। बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर इश्काल हुआ था कि आपने लफ्ज का माना क्या किया, इस्तेलामी किसे कहते हैं माया तलफ़ुज़ु बिहिल इंसान, जिस पर इंसान तलफ़ुज़ करता है। तो इस पर इश्काल हुआ कि कुछ लफ्ज जो हैं जो नहवी तो अपनी किताबों में जिक्र करते हैं लेकिन वो आपकी इस तारीफ से खारिज हो गए। नहवी जिक्र करते हैं ज़राबा के अंदर हुआ जमीर है, इसी तरह इज़रिब के अंदर अंता जमीर है, लेकिन जब भी जराबा बोलें कभी भी हुआ पर कोई तलफ़ुज़ नहीं करता, जब भी इज़रिब बोलें इसके अंदर अंता है लेकिन उस पर कभी कोई तलफ़ुज़ नहीं करता, वो तो इसके अंदर छुपी हुई है तो उस पर तो तलफ़ुज़ ही नहीं होता, तो वो तो लफ्ज़ से खारिज हो गया, क्योंकि लफ्ज़ तो आपने क्या कहा किसे कहते हैं माय तलफ़ुज़ु बिहिल इंसान। तो जवाब दिया था कि इंसान का उस पर तलफ़ुज़ करना आम है, चाहे हकीकतन तलफ़ुज़ करे और चाहे हुक्मन तलफ़ुज़ करे, और ज़राबा पर जब इंसान तलफ़ुज़ करता है तो हुक्मन जो इसके अंदर जमीर है उस पर भी तलफ़ुज़ कर लेता है, इज़रिब पर जब इंसान तलफ़ुज़ करता है तो इसके अंदर जो जमीर है अंता उस पर भी हुक्मन तलफ़ुज़ कर लेता है। हकीकत में तो तलफ़ुज़ नहीं करता हुआ और अंता पर जो इनके लफ्जों में छुपी हुई है, हां हुक्म लगा दिया, क्या हुक्म लगा दिया कि जी उस पर भी आपने तलफ़ुज़ कर लिया है। मसलन मैंने कहा ज़राबा, तो आप मुझे कहेंगे कि आपने ज़राबा फेल पर भी तलफ़ुज़ किया है और आपने हुआ पर भी तलफ़ुज़ किया है, या मसलन मैं कहता हूं इज़रिब, तो आप मुझे कहेंगे आपने इज़रिब पर भी तलफ़ुज़ किया है और इसके अंदर अंता ज़मीर पर भी तलफ़ुज़ किया है, तो वो उस अंता और हुआ पर मैंने हकीकतन तो तलफ़ुज़ नहीं किया, आपने कोई सुना मैंने अंता या हुआ कहा हो इसके अंदर, मैंने तो सिर्फ कहा इज़रिब, तो मैंने तो अंता पे तलफुज नहीं किया, या मैंने कहा जाराबा, मैंने तो हुआ पे तलफुज नहीं किया, लेकिन हुक्म लगा दिया जाएगा कि वो जमीर इसके अंदर छुपी है। जब इस लफ्ज पर तलफुज कर लिया तो गोया उस लफ्ज पर भी तलफुज कर लिया, तो यानी उस पर यह हुक्म लगा दिया, तो वो भी लफ्ज है हुक्मन। तो जैद, जाराबा, एजरेब, ये तो है हकीकतन लफ्ज, और इनके अंदर छुपी हुई जमीर हुआ और अंता क्या है, हुक्मन लफ्ज है, यानी लफ्ज हुक्मी है, लफ्ज हुक्मी है, लफ्ज हकीकी नहीं। अच्छा, इसको आपने हुक्मी लफ्ज क्यों कहा, इसको हुक्मी क्यों कहा, इसके लिए तो आप हुआ और अंत इस्तेमाल तो कर रहे हैं। कहते हैं भाई ये जो जराबा के अंदर जमीर छुपी है और इजरिब के अंदर जमीर छुपी है तो ये हुक्मी लफ्ज हैं। क्या हैं? हुक्मी, यानी हुक्मन इनको लफ्ज करार दे दिया है, हकीकत में ये लफ्ज नहीं है, क्योंकि ये मकूला हर्फ और सौत से नहीं है। लफ्ज तो किससे बनता है, हुरूफ से, और उसमें आवाज होती है, जबकि ये जो जराबा के अंदर जमीर छुपी है ना इसके हुरूफ हैं और ना इसकी कोई आवाज है। इसी तरह इजरिब के अंदर जो जमीर छुपी है ना तो उसके कोई हुरूफ हैं और ना उसकी कोई आवाज है, और इसके लिए अरबों ने कहते हैं कोई लफ्ज वजा नहीं किया, कोई लफ्ज वजा नहीं किया, बल्कि वही जमीर मुनफसिल वाले अल्फाज इनके लिए मुस्तार लेकर इस्तेमाल कर लेते हैं। और क्या कहते हैं, जराबा के अंदर हुआ जमीर है, भाई हुआ तो जमीर मरफू मुनफसिल है और इसके अंदर जराबा के अंदर तो जमीर मरफू मुत्तसिल है, तो यहां इसके लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, मजबूरन वही मुनफसिल वाला लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल कर लिया। तो जराबा के अंदर जो जमीर छुपी है उसके लिए अरबों ने कोई लफ्ज वजा नहीं किया, ये जो हुआ हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये आरियतन यानी मुस्तार लेकर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह इजरिब के अंदर जो जमीर छुपी हुई है उसके लिए अरबों ने कोई लफ्ज वजा नहीं किया, उसके लिए जो हम अंता जमीर इस्तेमाल करते हैं ये मुस्तार लेकर, क्या करके, मुस्तार लेकर इस्तेमाल करते हैं। और फिर कि भाई सवाल यह है कि जराबा के अंदर हुआ जमीर और इजरिब के अंदर अंता जमीर, उसको लफ्ज करार देने की क्या जरूरत है, जब ना आप उस पर तलफुज करते हैं ना उसके लिए अरबों ने कोई लफ्ज वजा किया है, तो उसको लफ्ज करार देने की क्या जरूरत है कि आप कहते हैं जी ये लफ्ज हुक्मी है। कहते हैं वजह यह कि इसकी जरूरत है क्योंकि नहवी हजरात इस पर लफ्ज के अहकाम जारी करते हैं, और किस तरह कहते हैं जराबा फेल है, इसके अंदर हुआ जमीर फाइल है, देखा उसको फाइल बनाते हैं और फाइल तो हमेशा लफ्ज होता है, गैर लफ्ज नहीं, तो इसनाद हो गया, इसकी तरफ इसनाद हो रहा है और इसनाद हमेशा लफ्ज की तरफ होता है। इसी तरह कभी इसका आगे इसकी ताकीद लेकर आते हैं, कभी इसके लिए बदल लेकर आते हैं, कभी इसी पर आतफ करते हैं, और यह सब लफ्ज के अहकाम हैं। बदल भी किससे आता है, लफ्ज से, आतफ भी किस पर होता है, लफ्ज पर, और ताकीद भी किसकी लाते हैं, लफ्ज की, तो ये लफ्ज के अहकाम हैं, तो ये इस पर जारी होते हैं, लिहाजा मजबूरन इसको क्या करार देना पड़ेगा, लफ्ज हुक्मी, ताकि इस पर लफ्ज के अहकाम जारी हो सकें। इस पर फिर इश्काल हुआ कि फिर तो जो महजूफ होता है इबारतों में उसको भी लफ्ज हुक्मी कहना चाहिए, क्योंकि उस पर भी हम तलफुज नहीं करते। जैदुन फिदारी, यहां क्या महजूफ है, साबितुन, उस पर मैंने कोई तलफुज किया जैदुन फिदार, तो उसको भी क्या कहना चाहिए, लफ्ज हुक्मी। कहते हैं भाई वो लफ्ज हुक्मी नहीं, वो लफ्ज हकीकी ही है, क्योंकि इस जुमले में तो साबितुन महजूफ है, लेकिन दूसरी जगह बाज जगह उसको लफ्जों में क्या करते हैं, जिक्र भी तो करते हैं, तो उस पर लफ्ज, तो उस पर इंसान हकीकतन क्या करता है, तलफुज करता है, इसलिए वो लफ्ज हकीकी है। और नीस कहते हैं इसी के अंदर अल्लाह ताला के जो कलिमात हैं वो भी दाखिल हो गए, क्योंकि वो उन पर भी इंसान तलफुज करता है, और इसी तरह जिन्नात और मलाइका के कलिमात भी इसमें दाखिल हो गए, क्योंकि उन पर भी इंसान तलफुज करता है। आगे दवाले अरबा का जिक्र आया, मैंने बतलाया दवाले अरबा चार दलालत करने वाली चीजें, खुतूत, उकूद, नुसुब, इशारात। खुतूत ये तहरीरें जो ये लिखाइयां हैं, ये अल्फाज पर दलालत करती हैं, और उकूद जो है, ये उकूद से मैंने बताया उकूदुल अनामिल मुराद है, ये अरब जो है हाथ की उंगलियों पर एक से लेकर 10,000 तक आदद शुमार करते थे। तो देखो तहरीर जो लिखाइयां हैं उनमें भी वजा का दखल है, क्या किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की लकीरों को मुख्तलिफ अल्फाज के लिए वजा किया गया है, मुकर्रर किया गया है। जैसे जामी मेरे सामने पड़ी है और मैं इसको देखकर पढ़ता जा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये वाली टेढ़ी मेढ़ी लकीर किस लफ्ज के लिए है और ये वाली टेढ़ी लकीर किस लफ्ज के लिए है। इसी तरह उकूद में भी वजा है, तायीन की गई है। और इसी तरह नुसुब मैंने बताया, वो जो पुराने जमाने में सफर करते हुए हर मंजिल पर एक पत्थर गाड़ा जाता था जिसे पता चलता था, जिसको सफर करने वाले शुमार करते थे, गिनते जाते थे कि इतनी मंजिलें गुजर गई हैं, तो वो है नुसुब। और इसी तरह इशारात मुख्तलिफ किस्म के, तो ये सब क्या है, ये दलालत करने वाली चीजें हैं, एक चीज से दूसरी चीज का पता चल जाता है। तो बाज़ उलमा ने कहा कि ये जो लफ्ज़ुन है, लफ्ज़ुन की कैद जो साहिब काफिया ने जिक्र की, ये दवाले अरबा को निकालने के लिए, किसके लिए, दवाले अरबा को निकालने के लिए लफ्ज़ुन कहा, क्योंकि दवाले अरबा में से एक भी लफ्ज़ नहीं है, सब में वजह तो है, इन सब में वजह किसे कहते हैं, एक चीज को दूसरी चीज के लिए मुकर्रर करना कि पहली से दूसरी का पता चल जाए, तो इनमें वजह तो है लेकिन इनमें से कोई भी लफ्ज नहीं। लिखाइयां देखो, ये तो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं, लफ्ज तो वो है जो मैं जुबान से अदा कर रहा हूं, हां ये लिखाइयां लफ्ज पर दलालत जरूर करती हैं लेकिन खुद ये लफ्ज नहीं है। इसी तरह उकूद जो उंगलियों से इशारे हैं, देखो वहां उंगली से इशारा किया, लफ्ज वहां भी कोई नहीं। और इसी तरह नुसुब, वो जो पत्थर रास्ते में गाड़े गए हैं, वो भी क्या है, उनमें भी वजह है लेकिन लफ्ज वो नहीं, वो पत्थरों को देखते ही देखने वाला समझ जाता है कि दो मंजिलें या तीन मंजिलें अब गुजर गई हैं। इसी तरह इशारात हैं, तो ये इनमें से लफ्ज कोई भी नहीं, वजह तो इन सब में है लेकिन लफ्ज कोई भी नहीं है। तो बाज़ उलमा ने कहा कि साहिब काफिया ने जो कलिमा की तारीफ शुरू की, अल कलिमतु लफ्ज़ुन, तो लफ्ज़ुन कहकर किसको निकाल दिया, दवाले अरबा को निकाल दिया क्योंकि वह लफ्ज नहीं है। तो शारह जामी उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं भाई, लफ्ज से तो तारीफ शुरू हो रही है, कलिमा की तारीफ शुरू हो रही है, लफ्ज से पहले कोई और लफ्ज आया होता और उसमें दवाले अरबा शामिल होते तो फिर क्या किया जाता, लफ्ज के जरिए उसको निकाला जाता, वो इस तारीफ में दाखिल ही नहीं, लिहाजा कोई कैद लगाकर उनको निकालने की हाजत भी नहीं है। अब आगे देखिए भाई, وإنما قال لفظ ولم يقل لفظة لأنه لم يقصد الوحدة والمطابقة غير لازمة لعدم الاشتقاق مع كون اللفظ أقصر। याद रखिए, ये जो काफिया है ये माखूज है मुफस्सल से, मुफस्सल मीम फा साद लाम, मुफस्सल मुफस्सल किताब है अल्लामा ज़मख़शरी की भाई। अल्लामा ज़मख़शरी बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और उनकी मशहूर तफसीर है कशाफ भाई, कुरान की अजीम तफसीर कशाफ उन्होंने लिखी जिसमें वो कुरान की फसाहत और बलागत को बयान करते हैं। और उलमा लिखते हैं कि क़यामत तक आने वाले तमाम उलमा इस तफसीर के मोहताज हैं, जिसको भी कुरान की तफसीर लिखनी हो उसको कशाफ को देखना पड़ेगा, ऐसी अजीम तफसीर लिखी। तो ये जो अल्लामा ज़मख़शरी हैं, इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था मुफस्सल। साहिब काफिया ने उसी से अखज करते हुए, उसी से लेकर अपनी ये काफिया लिखी है। और मुफस्सल को मुफस्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें फसलें बहुत ज्यादा हैं, हर चंद सत्रों के बाद नई फसल, हर चंद सत्रों के बाद नई फसल, बल्कि बाज फसलें तो एक एक सत्र की हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें फसलें हैं। तो उसका नाम क्या है उस किताब का, मुफस्सल। तो उसी मुफस्सल से अखज करते हुए साहिब काफिया ने यह किताब काफिया लिखी, लेकिन साहिब काफिया को यह तरीका इतना नापसंद आया, किताब तो बहुत इल्मी है कि साहिब काफिया ने भी उसे ही अखज किया, लेकिन छोटी छोटी बेशुमार फसलें जिक्र हैं, साहिब काफिया को यह तरीका इतना नापसंद आया कि उन्होंने अपनी पूरी काफिया में एक भी फसल जिक्र नहीं की गई। जो साहिब मुफस्सल हैं यानी अल्लामा ज़मख़शरी, उन्होंने जो कलिमा की तारीफ की है उसमें उन्होंने लफ्ज़ुन के बजाय लफ्ज़तुन कहा है। कलिमा की तारीफ किस तरह जिक्र की है, लफ्ज़तुन कहा है, लफ्ज़तुन, तो ता वहदत के लिए, लफ्ज़ुन ये तो आम है, लफ्ज मस्तर है ना, कलील पर भी बोला जाता है और कसीर पर भी बोला जाता है भाई। एक लफ्ज हो वो भी लफ्ज, हजार हो वो भी क्या है लफ्ज। तो साहिब मुफस्सल बतलाना चाहते थे कि कलीमा एक लफ्ज हो उसको कलीमा कहते हैं, जो एक से ज्यादा हो उसको कलीमा नहीं कहेंगे। तो चुनांचे उन्होंने वहदत वाली ता भी साथ जोड़ दी, अल कलिमतु लफ्जतुन, कलीमा एक लफ्ज है। जबकि साहिब काफिया के नजदीक कलीमा के अंदर वहदत लफ्ज जरूरी नहीं है, लफ्ज का एक होना जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा लफ्ज भी हो वो भी क्या कहलाएंगे, कलीमा कहलाएंगे, वो भी क्या है कलीमा में दाखिल हैं। और एक है वहदत माना, माना एक हो, तो वो साहिब मुफस्सल भी फरमाते हैं कि कलीमा का माना एक होना चाहिए, और साहिब काफिया भी क्या फरमाते हैं कि कलीमा का माना एक होना चाहिए। तो यूं कहो यहां गोया दो चीजें हैं, एक है वहदत लफ्ज, एक है वहदत माना। साहिब मुफस्सल फरमाते हैं कलीमा के अंदर वहदत लफ्ज भी जरूरी और वहदत माना भी जरूरी है, लफ्ज भी एक होना चाहिए और माना भी एक होना चाहिए, फिर उसको कलीमा कहेंगे। जबकि साहिब काफिया के नजदीक कलीमा के अंदर वहदत माना तो जरूरी है लेकिन वहदत लफ्ज जरूरी नहीं, माना एक होना चाहिए, लफ्ज चाहे एक ना भी हो। चुनांचे किसी का नाम रख दिया अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह नाम रख दिया, अब तो यह आलम बन गया, और आलम के अंदर आप जानते हैं माना मकसूद नहीं होता। तो साहिब काफिया के नजदीक अब्दुल्लाह कलीमा है, अब्दुल्लाह कलीमा है, क्योंकि यहां माना एक ही है, अब्दुल्लाह से कोई एक जात मुराद है, तवज्जो है, अब्दुल्लाह से एक जात मुराद है जिसका यह नाम है। तो माना के अंदर वहदत है, लफ्जों के अंदर वहदत ना हो, लफ्ज तो दो हैं, अब्द अलग है और लफ्ज अल्लाह अलग है, तो लफ्जों में वहदत नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या है कलीमा है, क्योंकि साहिब काफिया के नजदीक वहदत लफ्ज जरूरी नहीं है बल्कि वहदत माना जरूरी है। जबकि साहिब मुफस्सल यानी अल्लामा ज़मख़शरी के नजदीक अब्दुल्लाह कलीमा नहीं, कलीमा से खारिज है, क्योंकि कलीमा में वहदत माना के साथ साथ वहदत लफ्ज भी जरूरी है। बात समझ में आ गई। और अब्दुल्ला तो एक लफ्ज नहीं है, ये दो लफ्ज हैं भाई। देखिए किताब पर कहते हैं वह इन्नमा काल लफ्जुन वलम यकुल लफ्जतुन, साहिब काफिया ने लफ्जुन ही कहा और लफ्जतुन नहीं कहा, लिअन्नहु लम यक्सिदिल वहदता, इसलिए क्योंकि उन्होंने वहदत का इरादा नहीं किया, वहदत का इरादा नहीं किया, क्योंकि उनके नजदीक कलीमा एक लफ्ज का नाम नहीं है, उसमें वहदत जरूरी नहीं है। वल मुताबकत गैरु लाजिमतिन, अच्छा यहां से अब एक दूसरे एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज यह होता है कि अल कलिमतु है मुबतदा और लफ्जुन है उसकी खबर, और मुबतदा खबर में तस्कीर और तानीस में मुताबकत होती है भाई। अल कलिमतुम के साथ तो ता जुड़ी हुई है जो तानीस की अलामत है, लफ्जुन के साथ ता नहीं जुड़ी हुई, हालांकि लफ्जुन के साथ भी क्या होनी चाहिए, ता जुड़ी होनी चाहिए ताकि मुब्तदा और खबर में मुताबकत हो जाए। मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी क्या होनी चाहिए, मुअन्नस होनी चाहिए। इसका जवाब याद रखिए, याद रखिए मुब्तदा और खबर में मुताबकत की चार शराइत हैं, मैंने जिक्र की थी, मुब्तदा और खबर में मुताबकत की चार शराइत हैं भाई, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ये आपके काम आएंगी भाई, लिखिए भाई, मुब्तदा खबर में मुताबकत की चार शराइत हैं, मुब्तदा खबर में मुताबकत की चार शराइत हैं। नंबर एक, खबर मुश्तक हो, खबर मुश्तक हो, लिहाजा अल कलिमतु लफ्जुन का एतराज खत्म हुआ, लिहाजा अल कलिमतु लफ्जुन का एतराज खत्म हुआ, क्योंकि लफ्ज मुश्तक नहीं बल्कि मस्तर है, क्योंकि लफ्ज मुश्तक नहीं बल्कि मस्तर है। दूसरी शर्त, उस मुश्तक में कोई जमीर हो जो मुब्तदा की तरफ लौटे, उस मुश्तक में कोई जमीर हो जो मुबतदा की तरफ लौटे, लिहाजा जैदुन आलिमतुन उम्मुहू, लिहाजा जैदुन आलिमतुन उम्मुहू का एतराज खत्म हुआ। लिहाजा जैदुन आलिमतुन उम्मुहू का एतराज खत्म हुआ क्योंकि आलिमतुन अगरचे मुश्तक है, क्योंकि आलिमतुन अगरचे मुश्तक है लेकिन इसके अंदर कोई जमीर नहीं, लेकिन इसके अंदर कोई जमीर नहीं क्योंकि इसका फाइल, क्योंकि इसका फाइल इसमें जाहिर है, क्योंकि इसका फाइल इसमें जाहिर है, यानी उम्मुहू, यानी उम्मुहू, यानी उम्मुहू। बात समझ में आ गई? देखो इसको समझ लो, आपको मैंने बताया था हर फेल के लिए फाइल या नाइब फाइल जरूर चाहिए और ये फाइल या नाइब फाइल जमीर भी हो सकती है और इसमें जाहिर भी हो सकता है लेकिन आएगा एक ही। अगर इसमें जाहिर फाइल आया तो जमीर नहीं आएगी और अगर जमीर आ गई तो इसमें जाहिर फाइल नहीं आएगा। इसी तरह सिफत के सीगे भी हैं, उनके लिए भी फाइल या नाइब फाइल जरूर चाहिए। तो आलिमतुन क्या है? सिफत का सीगा है, ये इसमें फाइल है तो इसके लिए फाइल चाहिए भाई। और वो फाइल जैसे फेल के लिए फाइल जमीर भी आ सकती है और इसमें जाहिर, सिफत के सीगे के लिए भी फाइल या नाइब फाइल जमीर भी आ सकती है और इसमें जाहिर भी। तो यहां पर आलिमतुन जो है इसके लिए उम्मुहू जो है ये फाइल है भाई, ये क्या है? फाइल है। तो जब फाइल आ गया इसमें जाहिर तो अब आलिमतुन के अंदर कोई जमीर नहीं है। तो यह तरकीब कैसे होगी, जरा तरकीब पर नजर रखो। देखो जरा, जैदुन मरफू लफजान मुब्तदा, आलिमतुन मरफू लफजान सीगा इसमें फाइल, इसमें फाइल के लिए क्या चाहिए? फाइल। तो आगे उम्मुहू, उम्मु मरफू लफजान मुजाफ, मरफू क्यों? क्योंकि ये फाइल है आलिमतुन के लिए, फाइल क्या होता है? मरफू। और मरफू लफजान मुजाफ, मुजाफ आपको कैसे पता चला ये मुजाफ है? जिस इसम के साथ भी क्या आ जाए जमीर मुत्तसिल वापस में क्या होते हैं? मुजाफ मुजाफिल है। तो ये मुजाफ हुआ, हा जमीर मजरूर महल्लान मुजाफिल है, मजरूर क्यों? मुजाफिल है। उम्मुहू, मैं तो इस पर पेश पढ़ रहा हूं, जम्मा पढ़ रहा हूं, तो ये मजरूर कैसे? शाबाश। तो आप कहेंगे ये इसकी हरकत है, ये तो मबनी है, मबनी पर एराब नहीं आता, ये इसकी हरकत है। तो ये मजरूर महल्लान मुजाफ इले, मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर ये फाइल हुआ किसका? आलिमतुन का। और ये उम्मुहू की हा जमीर राजे है जैद को, ये रबत आ गया। तो मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर फाइल हुआ, इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर ये खबर किसकी? मुब्तदा की। और मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। जैदुन आलिमतुन उम्मुहू, जैदुन क्यों मरफू? मुब्तदा। आलिमतुन क्यों मरफू? खबर। और उम्मुहू क्यों मरफू? फाइल है। तो देखो अब आलिमतुन में जमीर नहीं है, जमीर नहीं, और इसका फाइल इसमें जाहिर आगे आ रहा है। और फाइल मुजक्कर हो तो फेल को, इधर देखिए, फाइल मुजक्कर हो तो फेल मुजक्कर लाते हैं, फाइल मुअन्नस हो तो फेल मुअन्नस लाते हैं। इसी तरह सिफत के सीगों में भी है। तो यहां उम्मुहू मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है, इसीलिए इसके लिए आलिमतुन मुअन्नस सिफत लेकर आए। बात समझ में आ गई? तो अब कोई आप पर इश्काल करे कि जैदुन तो है मुब्तदा और आलिमतुन उम्मुहू उसकी खबर है, ये तो मुअन्नस है, मुब्तदा खबर में मुताबकत नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि यहां दूसरी शर्त पूरी नहीं है? पहली शर्त क्या थी? खबर क्या हो? मुश्तक हो, यहां भी आलिमतुन भी मुश्तक है, लेकिन दूसरी शर्त क्या थी कि उसके अंदर कोई जमीर हो जो किसको लौटे, मुब्तदा को, और आलिमतुन में कोई जमीर नहीं है जो किसको लौटे, मुब्तदा को, क्योंकि इसका फाइल इसमें जाहिर आगे आ रहा है। अगर आगे उम्मुहू न होता फिर हमें आलिमुन के अंदर जमीर निकालना पड़ती, और फिर आलिमतुन न लाते बल्कि क्या लाते, आलिमुन लाते, क्योंकि हुआ जमीर चाहिए थी जो किसको लौटे, जैद को, और फिर इस तरह मुताबकत आ जाती। जैदुन आलिमतुन उम्मुहू, तर्जमा क्या है? हां, जैद की मां आलिमा है। जैदुन आलिमतुन, जैद के आलिमा है उम्मुहू उसकी मां। देखा, आलिमा के लिए फाइल उम्मुहू है तो वो आलिमा है। तकरीर समझ में आ गई? तो मुब्तदा खबर में मुताबकत के लिए चार शर्तें हैं। पहली शर्त क्या कि खबर क्या हो, मुश्तक, लिहाजा अलकलिमतु लफ्जुन निकल गया, क्योंकि लफ्ज क्या है, मुश्तक है ही नहीं, लफ्ज तो क्या है, मस्तर है, लिहाजा यहां मुताबकत जरूरी नहीं। तीसरी शर्त, तीसरी शर्त लिखिए भाई, खबर कोई ऐसी सिफत ना हो, खबर कोई ऐसी सिफत ना हो जो खास हो मुअन्नस के साथ, जो खास हो मुअन्नस के साथ, लिहाजा लिहाजा अल इमरातु तालिकुन, अल इमरातु तालिकुन, अल इमरातु तालिकुन, निशान लगाइए, अल इमरातु हामिलुन, अल इमरातु हामिलुन, फिर निशान लगाइए, तीसरा जुमला लिखिए, अल इमरातु मुरज़िउन, अल इमरातु मुरज़िउन, ज़ाद है, मीम रा ज़ाद और आइन, अल इमरातु मुरज़िउन का इश्काल खत्म हुआ, का इश्काल खत्म हुआ, का इश्काल खत्म हुआ। देखो इसको समझ लो, पहली शर्त क्या थी कि खबर क्या हो, मुश्तक, दूसरी क्या उसमें जमीर हो जो मुब्तदा को लौटे, और तीसरी कि वो वसफ मुअन्नस के साथ खास ना हो। तो अलिमरातु तालिकुन का एतराज खत्म हुआ। ये अलिमरातु तालिकुन, अलिमरातु है मुब्तदा और तालिकुन है उसकी खबर, मुब्तदा खबर में मुताबकत नहीं। तो आप कहेंगे कि यहां, कि यहां तीसरी शर्त पूरी नहीं है। तीसरी शर्त क्या थी, देखो पहली शर्त भी इसमें पूरी है, तालिकुन मुश्तक है, इसमें फाइल है, और दूसरी शर्त भी पूरी, इस तालिकुन में जमीर है जो किसको लौट रही है, मुब्तदा को, आगे कोई इसमें जाहिर फाइल नहीं आ रहा। लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं कि वो सिफत मुअन्नस के साथ खास ना हो, हालांकि तालिकुन ये सिफत खास है मुअन्नस के साथ। तलाक वाली औरत होती है, मर्द नहीं होता, तलाक औरत की सिफत बनती है, मर्द की सिफत नहीं बनती। तो जब ये औरत की सिफत है तो लिहाजा तालिकुन भी लिया, बात ठीक है। देखो ये जो ता लेकर आते हैं ये मुजक्कर और मुअन्नस में फर्क करने के लिए है। जैदुन आलिमुन और जैनबु आलिमतुन, आलिम मर्द भी हो सकता है और आलिमा औरत भी हो सकती है, तो ये सिफत दोनों में पाई जाती है। तो फिर मुजक्कर और मुअन्नस में फर्क ता के जरिए करेंगे, मुजक्कर के लिए ता नहीं लाएंगे और यूं कहेंगे जैदुन आलिमुन, और मुअन्नस के लिए ता लेकर आएंगे और यूं कहेंगे जैनबु आलिमतुन। लेकिन ये तलाक, ये सिफत तो सिर्फ किसके अंदर है, औरत में, लिहाजा यहां ता के जरिए फर्क करने की जरूरत भी नहीं है। अलिमरातो तालिकुन, तवज्जो है? तो इसमें पहली शर्त भी पूरी कि मुश्तक है, दूसरी शर्त भी पूरी, इसमें जमीर है जो किसको लौट रही है, मुब्तदा को, लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं। तीसरी शर्त क्या थी कि वो वसफ मुअन्नस के साथ खास नहीं होना चाहिए, और हालांकि ये वसफ तो मुअन्नस के साथ खास है। तरकीब कैसे होगी? अलिमरातु तालिकुन, अलिमरातु मरफू लफ्जान मुब्तदा, तालिकुन मरफू लफ्जान सीगा इसमें फाइल, इसके अंदर हिया हिया, क्योंकि ता लाए बगैर ता लाने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर जमीर हमेशा कौन सी होगी, हिया, क्योंकि ये मुअन्नस की सिफत बनती है मुजक्कर की नहीं, तो इसके अंदर हिया जमीर मरफू महल्लन, जो राजे किसको, अलिमरा को, इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। इसी तरह है अलिमरा तो हामिलुन, हामिला होना यानी पेट में बच्चा होना यह भी सिर्फ औरत की सिफत है, यहां भी ता लाकर फर्क करने की जरूरत नहीं, इसके अंदर भी हिया जमीर है। इसी तरह अलिमरातु मुर्ज़िउन, मुर्ज़िउ दूध पिलाने वाली, तो यहां भी ता लाने की जरूरत नहीं क्योंकि दूध पिलाना यह सिर्फ यह सिफत सिर्फ किसकी है, औरत की है, और इन सब में हिया जमीर है। बात समझ में आ रही है, इसमें हिया जमीर है। हां हामिलुन, हामिलुन अलिमरातु हामिलुन, ये इस हामिलुन का क्या माना है, हमल वाली, यानी जैसे हमल हो, पेट में बच्चा हो। अगर हामिलुन का माना हो बोझ उठाना, हमला यहमिलु का माना वजन उठाना भी होता है, तो वो सिफत मर्द और औरत दोनों की बनती है। मर्द भी क्या करता है, सामान वगैरह और बोझ उठा सकता है, औरत भी सामान वगैरह और बोझ उठा सकती है। तो अगर सामान और बोझ उठाने के माना में हो तो फिर फर्क करेंगे, मर्द के लिए लाएंगे हामिलुन और औरत के लिए लाएंगे हामिलतुन। जी चौथी शर्त भाई, आगे लिखिए भाई, चौथी शर्त, चौथी शर्त, खबर कोई ऐसा सीगा ना हो, खबर कोई ऐसा सीगा ना हो जो मुश्तरक हो बैनल मुजक्करी वल मुअन्नस, जो मुश्तरक हो बैनल मुजक्करी वल मुअन्नस। बस भाई शर्तें पूरी हुई, इसी चौथी शर्त की अभी तफसील बाकी है, अगली सतर में, अलग सतर में लिखें। और वो सीगे चार हैं, और वो सीगे चार हैं जो मुश्तरक हैं बैनल मुजक्करी वल मुअन्नस, जो मुश्तरक हैं बैनल मुजक्करी वल मुअन्नस। अब वो चार सीगे लिखने हैं। नंबर एक, नंबर एक, वो फ़ईल जो बमाने मफ़ऊल के हो, वो फ़ईल जो बमाने मफ़ऊल के हो, जैसे जरीह बमाने मजरूह, जरीह भाई जी मरा या और हा भाई हा, जरीहुन, जरीह का माना जख्मी है भाई, जैसे जरीह बमाने मजरूह। अरबी में कहते हैं अर्रजुलु जरीहुन, लिखें भाई लिखें, अर्रजुलु जरीहुन वलिमरातु जरीहुन, वलिमरातु जरीहुन। तवज्जो है, अर्रजुलु की खबर भी क्या आई, जरीहुन, और अलिमरा की खबर भी क्या आई, जरीहुन। एक ही सीगा मुश्तरक है बैनल मुजक्करी वल मुअन्नस। तो वो फ़ईल जो बमाने मफ़ऊल के होता है वो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जरीह बमाने मजरूह के है तो ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। रजुल के लिए भी जरीह कहेंगे, मुअन्नस के लिए भी जरीह कहेंगे। तरकीब कैसे होगी, अर्रजुलु जरीहुन, अर्रजुलु है मुब्तदा और जरीहुन के अंदर कौन सी जमीर निकालेंगे, हुआ, और अलिमरातु जरीहुन, इसमें जरीहुन में कौन सी जमीर निकालेंगे, हिया जमीर निकालेंगे, शाबाश। दूसरा सीगा भाई, वो चार सीगे जो मुश्तरक हैं बैनल मुजक्करी वल मुअन्नस, पहला क्या, वो फ़ईल जो बमाने मफ़ऊल हो, नंबर दो, वो फ़ऊल जो बमाने फ़ाइल हो, वो फ़ऊल जो बमाने फ़ाइल हो, जैसे सबूर बमाने साबिर, स्वाद के साथ है, जैसे सबूर, स्वाद बावरा, जैसे सबूर बमाने साबिर, सबूर बमाने साबिर, ये सिफत भी मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। रजुल के लिए भी क्या कहते हैं, अर्रजुलु सबूरुन, अलिमरातु सबूरुन। हां मर्द के लिए कौन सी जमीर निकालेंगे, हुआ, और औरत के लिए क्या निकालेंगे जमीर, ही आ भाई। नंबर तीन, नंबर तीन, वो इसमें तफजील जो मीन के साथ इस्तेमाल हो, वो इसमें तफजील जो मीन के साथ इस्तेमाल हो, वो इसमें तफजील जो मीन के साथ इस्तेमाल हो। इधर देखिए भाई, आप जानते हैं इसमें तफजील के इस्तेमाल के तीन तरीके हैं भाई, एक मीन के साथ, एक अलिफ्लाम के साथ और एक इजाफत के साथ। मसलन जैदुन अफजलु मिन आमरिन, एक तरीका अफजलु के साथ क्या आ गया मिन, दूसरा तरीका जैदुनिल अफजलु अल अफजल, देखो अलिफ लाम आया, और तीसरा तरीका है इजाफत का जैदुन अफजलुल कौमी, देखो अफजलु मुजाफ अल कौमी मुजाफुन इले। तो इसमें तफसील के इस्तेमाल के ये तीन तरीके हैं और इनमें से एक वक्त में एक ही तरीके से वो इस्तेमाल होगा, दो तरीके इकट्ठे नहीं होंगे। अगर मीन के साथ है तो अलिफ्लाम और इजाफत नहीं होगी, अलिफ्लाम आ जाए तो फिर बाकी दो तरीके नहीं होंगे, और इजाफत आ जाए तो फिर बाकी दो तरीके नहीं होंगे, एक वक्त में एक ही तरीके से। और याद रखो इनमें से असल तरीका मीन वाला है, इसमें तफजील के इस्तेमाल के तीन तरीके हैं, इनमें असल तरीका कौन सा है मीन वाला, और जब इसमें तफजील मीन के साथ इस्तेमाल हो तो ये मुजक्कर मुअन्नस वाहिद तस्निया जमा सब के लिए एक जैसा रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तवज्जो है, मसलन मैं कहना चाहता हूं जैदुन अफजलु मिन आमरिन, जैद अमर से अफजल है। मैं कहना चाहता हूं जैनब अमर से अफजल है, कैसे कहूंगा जैनबो अफजलु मिन आमरिन, देखा उसी तरह रहेगा सबके लिए, मुजक्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी वाहिद तस्निया और जमा सब के लिए, जैदुन अफजलु मिन आमरिन, जैनबो अफजलु मिन आमरिन। हां जैनब के साथ जब जोड़ना हो तो अफजलु में कौन सी जमीर निकालेंगे हिया, और जैद के साथ जोड़ना हो तो अफजल में कौन सी जमीर निकालेंगे हुआ, और इसी तरह तस्निया जमा ले आओ अज़ैदानी अफजलु मिन आमरिन, अज़ैदानी तस्निया है लेकिन अफजलु मिन आमरिन, अफजल उसी तरह मुफरद रहेगा, अज़ैदूना अफजलु मिन आमरिन। तो ये अफजलु वाहिद तस्निया जमा सब के लिए और इसी तरह मुजक्कर मुअन्नस सब के लिए यकसा रहेगा, और उसी के मुताबिक इसमें जमीर निकाल लेंगे, वाहिद के लिए वाहिद तस्निया के लिए तस्निया जमा के लिए जमा वाली जमीर निकाल लेंगे। लिहाजा क्या लिखा, लिहाजा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का एतराज खत्म हुआ, लिहाजा आगे लिखिए लिहाजा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का एतराज खत्म हुआ, लिहाजा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का एतराज खत्म हुआ। देखिए भाई देखो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसको समझ लीजिए अस्सलातु है मुब्तदा और खैरुम मिनन नौम है इसकी खबर, तो खैरुन इसमें तफजील आ गया खबर में। अब पहली शर्त भी पूरी, ये मुश्तक है, दूसरी शर्त भी पूरी, इसमें जमीर है जो किसको लौट रही है अस्सलात को, तीसरी शर्त पूरी कि यह सिफत मुअन्नस के साथ खास नहीं, यह खैर याद रखो इसमें तफजील है, क्या है ये खैर इसमें तफजील है, असल में था अखयर, फिर इसमें तखफीफ करके या की हरकत खा को दी और शुरू से हमजा को गिरा दिया तो क्या बन गया खैर, तो ये असल में अखयर था और ये इसमें ये कसीरुल इस्तेमाल है और कसरत इस्तेमाल तकाजा करती है खिफत का, तो लिहाजा इसमें तखफीफ कर दी गई, पहले था अखयर फिर या की हरकत खा को दे दी और शुरू से हमजा गिरा दिया तो क्या बन गया खैर। आप मुझे बताइए अखयर ये इसकी अदायगी जुबान से आसान है या खैर की, खैर की, देखा ये चूंकि कसीरुल इस्तेमाल था और कसरत इस्तेमाल तकाजा करती है खिफत का तो इसको खफीफ कर दिया। इसी तरह शर्रुन, शर्रुन ये भी क्या है इसमें तफजील है, असल में क्या था अशरारो, तो असल में ये अशरर था, फिर यहां से भी रा की हरकत शीन को दी और रा का राम इदगाम किया और शुरू से हमजा गिरा दिया तो क्या बन गया शर्रुन बन गया, तो खैर भी इसमें तफजील और शर्रुन भी इसमें तफजील है। तो मैं बात कर रहा था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलात है मुब्तदा और खैर क्या आ गई उसकी खबर, तो अब आप यह ना कहें मुब्तदा खबर में मुताबिकत नहीं, क्योंकि यहां चौथी शर्त पूरी नहीं, पहली शर्त भी पूरी है खैर इसमें तफजील का सीगा है, खैर मुश्तक है, दूसरी शर्त भी पूरी, इसके अंदर जमीर है जो किसको लौट रही है मुब्तदा को, तीसरी शर्त भी पूरी कि ये मुअन्नस के साथ ये सिफत खैर वाली खास नहीं। चौथी शर्त पूरी नहीं है, हमने कहा था ऐसा सीगा ना हो जो मुश्तरक हो बैनल मुजक्कर वल मुअन्नस, और ये इसमें तफजील मीन के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो ये मुश्तरक है बैनल मुजक्कर वल मुअन्नस भाई, तो यहां पर भी मुताबकत जरूरी नहीं। और नंबर चार जो है वह चौथा सीगा, नंबर चार मुबालगे के सीगे, नंबर चार मुबालगे के सीगे, जैसे जर्राबुन, अर रजुलु जर्राबुन, अर रजुलु जर्राबुन, अलिम्रातु जर्राबुन, रजुल के लिए भी जर्राब और इमरा के लिए भी जर्राब। हां, रजुल के लिए कौन सी जमीर निकालेंगे, हुआ, और इमरा के लिए जर्राब में कौन सी जमीर निकालेंगे, हिया निकालेंगे। तो देखो ये चार शर्तें हैं मुब्तदा खबर में मुताबकत के लिए। पहली शर्त क्या कि खबर क्या हो, मुश्तक हो। दूसरी शर्त क्या कि उसमें कोई जमीर हो जो मुब्तदा की तरफ लौटे। तीसरी शर्त ये कि वो ऐसा वसफ ना हो जो मुअन्नस के साथ खास हो। और चौथी शर्त ये कि वो ऐसा सीगा ना हो जो मुश्तरक हो बैनल मुजक्कर वल मुअन्नस। और वो चार सीगे हैं जो मुश्तरक हैं बैनल मुजक्कर वल मुअन्नस। नंबर एक, वो फ़ाइल जो बमाने मफ़ूल के हो। देखो जरीह बमाने मजरूह को याद रखो, ये खुद ही आपको ज़ाब्ता याद हो जाएगा। या वो फ़ाउल बमाने फ़ाइल के हो, जैसे सबूर बमाने साबिर, या वो इसमें तफजील मुस्तामल हो किसके साथ, मीन के साथ, और या वो मुबालगे का सीगा। तो इन चारों में से भी कोई ना हो भाई, इन चारों में से भी नहीं होना चाहिए। पहली दोनों शर्तों का होना जरूरी और आखिरी दोनों का न होना जरूरी, फिर मुताबकत जरूरी होगी। पहली दो कौन से होना जरूरी, मुश्तक भी हो और उसके अंदर कोई जमीर भी हो, और दो चीजों का न होना जरूरी कि वो वसफ खास ना हो मुअन्नस के साथ या कोई ऐसा सीगा ना हो जो मुश्तरक हो बैनल मुजक्कर वल मुअन्नस। तो ये शर्तें जब पूरी होंगी तो फिर मुताबकत जरूरी है। तो यहां पर देखिए एतराज क्या हुआ था, अल कलिमतु लफ्ज़ुन, अल कलिमा है मुब्तदा, उसके साथ ता जुड़ी हुई है जो तानीस की अलामत है, और लफ्ज़ुन के साथ ता नहीं, तो इश्काल हुआ दोनों में मुताबकत नहीं। तो जवाब गुजर गया, जवाब क्या हुआ कि यहां पहली शर्त ही पूरी नहीं। पहली शर्त क्या थी, मुश्तक का सीगा होना चाहिए, और लफ्ज मुश्तक है या मस्दर है, मस्दर है, तो लिहाजा मुताबकत जरूरी नहीं। देखिए भाई किताब पर कहते हैं, वल मुताबकतु गैरु लाजिमतिन लिअदमिल इश्तिकाक, और मुताबकत जरूरी नहीं है इश्तिकाक न होने की वजह से, कि लफ्ज जो है उसमें इश्तिकाक नहीं है, वो मुश्तक नहीं है। मा कौनी लफ्ज अखसरा, साथ लफ्ज के मुख्तसर होने के, साथ इसके कि लफ्ज ज्यादा मुख्तसर है, यह यूं कहें, मा कौनी लफ्ज अखसरा, बावजूद इसके कि लफ्ज ज्यादा मुख्तसर है। लफ्ज भाई देखो, अल कलिमतु लफ्जुन, और इसी तरह अल कलिमतु लफ्जतुन, अल कलिमतु लफ्जतुन भी मुख्तसर है, बात कोई लंबी नहीं है, अल कलिमतु लफ्जतुन भी मुख्तसर है, लेकिन अल कलिमतु लफ्जुन, ये लफ्जुन लफ्जतुन के मुकाबले में ज्यादा मुख्तसर है भाई। लफ्जुन भी मुख्तसर, लफ्जतुन भी मुख्तसर, लेकिन ज्यादा मुख्तसर क्या है, लफ्जुन है, तो इसलिए भी ता नहीं लेकर आए, क्योंकि साहिब काफिया लंबी बात नहीं करते, मुख्तसर बात करते हैं, और वो एक हर्फ भी जाया नहीं होने देते। तो इख्तिसार किसके अंदर था, क्या कहा जाए, लफ्जुन कहने में, इसलिए वो लफ्ज लाए, लफ्जतुन नहीं लाए। बात समझ में आ गई, ये माना है कि वल मुताबकतु गैरु लाजिमतिन लिअदमिल इश्तिकाक मा कौनिल लफ्ज़ अखसरा, और मुताबकत वो लाजिम नहीं है इश्तिकाक न होने की वजह से, मा कौनिल लफ्ज़ अखसरा, बावजूद लफ्ज के मुख्तसर होने के, यानी लफ्ज के मुख्तसर होने के साथ साथ इसमें लफ्ज भी मुख्तसर है और नीज मुताबकत भी नहीं जरूरी, क्योंकि ये मुश्तक नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। वो ज़िया अलवज़ तख़सीसु शैइन बिशैइन बिहैसु मता उत्लिका अव उहिस्सा शैउल अव्वलु फुहिमा मिन्हु शैउ सानी। वज़ा की तारीफ करने लगे हैं, वज़ा का लफ्ज आया, अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुज़िआ। अब वज़ा, वज़ा मैंने आपको बतला दिया था, वज़ा का क्या माना, मुकरर करना कि देखो ये जो हम जुबान बोलते हैं हम जानते हैं कि किस लफ्ज को किस माना के लिए मुकरर किया गया है। तो तख्सीस का माना भी है मुकरर करना, मुतय्यन करना। अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। याद रखो वजा का लुगवी माना है रखना, किसी चीज को उठाकर रखना। वज़अतु शैआ, मैंने वो चीज रख दी, तो वज़ा का लुगवी माना है रखना। और आगे ये इस्तेलाही तारीफ कर रहे हैं, अलवज़ु तख़सीसु शैइन बिशैइन। कहते हैं अलवज़ु तख़सीसु शैइन बिशैइन, वो तख़सीस करना एक चीज की दूसरी चीज के साथ, यानी एक चीज को खास कर देना दूसरी चीज के साथ। बिहैसु, इस तौर पर कि माता उतलिका उहिस्सा शय उल अव्वलु, कि जब भी बोली जाए उतलिका यानी इतलाक किया जाए, बोली जाए पहली चीज, माता उतलिका जब भी बोली जाए, उहिस्सा या महसूस की जाए, अशय उल अव्वलु शय अव्वल, फुहिमा मिनहु शय उस्सानी, तो उससे शय सानी मफहूम हो। इधर देखिए भाई, वजा की तारीफ कर रहे हैं। वजा किसे कहते हैं? तख्सीसु शैइन बिशैइन, एक चीज को खास करना दूसरी शय के साथ, इस तौर पर कि पहली शय को बोला जाए या महसूस किया जाए तो उससे दूसरी शय समझ में आ जाए, पहली शय को बोला जाए तो उससे दूसरी शय समझ में आ जाए। मैंने कहा गिलास, फौरन पानी पीने वाला एक बर्तन आपके जहन में आ गया, देखा ये मैंने इतलाक किया, बोला गिलास बोला तो बर्तन आपके जहन में आ गया। और कभी महसूस करने से होगा, जैसे देखो आप गाड़ी चला रहे हैं, सुर्ख रंग की लाइट जल पड़ी, आपने गाड़ी रोक दी, तो एक चीज ने दलालत की दूसरी चीज पर। सुर्ख लाइट ने दलालत की किस बात पर? गाड़ी के रोकने पर। अब यहां किसी ने कोई लफ्ज जुबान से बोला है, कहा है? नहीं। हां, एक चीज को आपने महसूस किया यानी देखा, तो देखते ही आपको पता चल गया कि अब क्या करना है, गाड़ी को रोकना है, क्योंकि सुर्ख लाइट किस लिए मुकरर की गई है? गाड़ी रोकने के लिए। तो तख्सीसु शैइन बिशैइन, एक शय को खास किया गया है, सुर्ख लाइट को खास किया गया है दूसरी शय यानी गाड़ी के रोकने के साथ, यानी पहली चीज को अगर बोला जाए या महसूस किया जाए तो दूसरी चीज समझ में आ जाती है। यहां आपने सुर्ख लाइट को महसूस किया यानी आंखों से देखा तो फौरन आपको समझ में आ गई दूसरी चीज कि क्या करना है, गाड़ी को रोकना है। या जैसे बाज इलाकों में इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त सायरन बजाया जाता है, सायरन बजाया, तो जैसे ही इफ्तारी के वक्त सायरन बजता है आप समझ जाते हैं कि इफ्तारी का वक्त हो गया है, तो आप खाना पीना शुरू कर देते हैं, आप रोजा इफ्तार कर लेते हैं। अब देखो यहां किसी ने जुबान से कोई लफ्ज कहा नहीं, एक चीज को आपने महसूस किया यानी कानों से सुना, सुनते ही आप समझ गए, सुनते ही दूसरी चीज आपके जहन में आ गई। सुना किसको? सायरन को। और जहन में दूसरी चीज क्या आई? कि इफ्तारी का वक्त हो गया है। तो देखा, एक चीज से दूसरी चीज समझ में आ जाए, इसको क्या कहते हैं? वजा कहते हैं। बात अच्छी तरह समझ में आ गई? तो कहते हैं अलवज़ु तख़सीसु शैइन बिशैइन, वजा कहते हैं एक चीज को खास करना दूसरी शय के साथ। बिहैसु, इस तौर पर कि मता उतलिका अव उहिस्सा शय उल अव्वलु, कि जब बोला जाए या महसूस किया जाए पहली चीज को, तो फोहिमा मिनहु शय उस्सानी, तो उससे दूसरी शय समझ में आ जाए। कील यखरुजु अनहु वज़उल हर्फी, यहां से एक एतराज और फिर उसका जवाब जिक्र करेंगे। एतराज यह होता है कि तारीफ किसकी हो रही है? कलिमा की। कलिमा की, अल कलिमा तो लफ्जों वज़अ, और उसके अंदर वज़ा आया, तो वज़ा की तारीफ आपने क्या की? तख़सीसु शैइन बिशैइन, बिहैसु मता उतलिका और उहिस्सा शैउल अव्वलु फुहिमा मिनहु शैउस सानी, तो तारीफ हो रही है कलिमा की, और कलिमा इसम भी है, फेल भी है और हर्फ भी है। लेकिन आपने जो वजा की तारीफ की इससे तो हर्फ निकल गया, इसलिए क्योंकि हर्फ बोलें तो उसका माना समझ में नहीं आता जब तक उसके साथ और लफ्ज न मिलाए जाएं। आपने तो क्या कहा था? वजा किसे कहते हैं? एक चीज का दूसरी से के साथ खास होना, एक चीज का दूसरी चीज के साथ इस तरह खास होना कि पहली चीज बोलें तो दूसरी चीज समझ में आ जाए, या पहली चीज को महसूस करें तो दूसरी चीज समझ में आ जाए, लेकिन हर्फ ऐसा नहीं। मसलन देखो, एक है इब्तेदा, आगाज करना, एक चीज को शुरू करना। मैंने कहा इब्तेदा, माना समझ में आया? क्या माना? शुरू करना। इसी तरह मीन का माना भी है इब्तेदा करना, लेकिन मैं कहूं मीन, आपको इसका माना समझ में नहीं आएगा। हां, जब मैं इसके साथ और लफ्ज़ मिलाऊंगा और यूं कहूंगा सिरतु मिनल बसरति इलल कूफा, मैं चला बसरा से कूफा तक, तो मैं चला कहां से? बसरा से। मालूम है मेरे चलने की इब्तिदा कहां से हो रही है? बसरा से। और इख्तिताम कहां पर हो रहा है? कूफा में। तो मेरे चलने की इब्तिदा कहां से हुई? बसरा से। ये किसने बताया आपको? ये किससे पता चला आपको? मीन से। तो मीन भी किस लिए आता है? इब्तिदा के लिए। और लफ्ज इब्तिदा भी किस लिए आता है? इब्तिदा के लिए। लेकिन इब्तिदा है इसम, और इसम को किसी लफ्ज के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं, उसका माना खुद ब खुद समझ में आ जाता है। तो इब्तिदा जब मैंने कहा आपको इसका माना समझ में आ गया कि इसका माना है शुरू करना, और मीन का माना भी क्या है? इब्तिदा। लेकिन जब मैंने मीन कहा आपको उसका माना समझ में नहीं आया। हां, जब मैंने उसके साथ और लफ्ज जोड़ दिए सिर तो मिनल बसरति इलल कूफा, अब आपको मीन का माना शुरू करना समझ में आ गया। बात चल रही थी वजा की, आपने क्या कहा? वजा किसे कहते हैं? कि एक शय का दूसरी शय के साथ इस तरह खास होना कि उस शय के बोलने या महसूस करने पर दूसरी शय समझ में आ जाए। लेकिन हर्फ तो इसे निकल गया, हर्फ के बोलने से तो उसका माना समझ में नहीं आता। एतराज समझ में आया? तो उसका जवाब देंगे कि भाई बोलने से मुराद यह है, यानी सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और हर्फ का सही तरीके से बोलना और इस्तेमाल करना किस तरह है कि उसके साथ और लफ्ज भी मिलाए जाए, अकेला न बोला जाए। कीला कहा गया है या खुरुजु अनहु वज़ुल हर्फी, के इस तारीफ से हर्फ की वजा खारिज हो गई, निकल गई। हैसु ला युफ़हमु मिन्हु मानाहु मता उतलिका, इस हैसियत से कि हर्फ से उसका माना समझ में नहीं आता मता उतलिका, जब उसको बोला जाए। बल इदा उतलिका मा ज़म्मी ज़मीमतिन, बल्कि जब उसको बोला जाए, उसका इतलाक किया जाए जम्मे जमीमा के साथ, फिर वो समझ में आता है। जम्मे जमीमा के साथ, जम उनका माना होता है मिलाना, मिलाना जोड़ना, और जमीमा जोड़ी हुई चीज, मिलाई हुई चीज। कहते हैं बल इदा उतलिका मा जम्मी जमीमतिन, बल्कि जब इसको बोला जाए, इसका इतलाक किया जाए कोई चीज साथ मिलाकर, कोई जमीमा साथ मिला, कोई मिलाई हुई चीज साथ मिलाकर, यानी और लफ्जों को साथ मिलाकर। इश्काल यह होता है कि वज़ हर्फ जो है आपकी तारीफ से खारिज हो गई, क्योंकि हर्फ को जब बोला जाए तो उसका माना समझ में नहीं आता, बल्कि जब इसके साथ कोई जम्मे जमीमा हो, कोई और लफ्ज मिलाया जाए, फिर यह हमें समझ में, फिर इसका माना समझ में आता है। ये एतराज था, अब जवाब देने लगे। कहते हैं वह उजीबा, और इसका जवाब दिया गया है बी अन अल मुरादा मता उतलिका इतलाकन सहीहन, कि मुराद यह है कि जो तारीफ में आया ना मता उतलिका, जब इसका इतलाक किया जाए, उस इतलाक से हर इतलाक मुराद नहीं है, बल्कि इतलाक सहीह मुराद है। क्या है? सही इतलाक मुराद है। और हर्फ का सही इतलाक क्या है? बगैर किसी लफ्ज के मिलाए हो या लफ्जों के साथ जोड़कर, लफ्जों के साथ जोड़कर उसको इस्तेमाल किया जाता है और बोला जाता है, उसके बगैर नहीं बोला जाता। तो कहते हैं वह उजीबा, और जवाब दिया गया भी अन्नल मुरादा मता उतलिका इतलाकन सहीहन, कि मुराद जो है कि जब इसका इतलाक सहीह किया जाए। वह इतलाक उल हर्फ बिला जम्मी जमीमतिन गैरु सहीहिन, और हर्फ का इतलाक जो है यानी उसको बोलना, उसको इस्तेमाल करना बगैर जम्मे जमीमा के, यानी बगैर किसी और चीज के मिलाए हुए, गैर सहीह, वो गैर सहीह है, वो सही नहीं। इश्काल जवाब समझ में आ गया। वला यब उदू अं युकाला, यहां से दूसरा जवाब दे रहे हैं। पहला जवाब क्या? पहला जवाब यह दिया कि इतलाक से इतलाक सही मुराद है, और हर्फ का इतलाक बगैर जम्मे जमीमा के सही ही नहीं। दूसरा जवाब यह देंगे कि आप यूं भी कह सकते हैं कि इतलाक से मुराद वो वाला इतलाक है जो अहले अरब बोलते हैं और इस्तेमाल करते हैं, हर इतलाक मुराद नहीं। जो यानी जिस तरीके पर अहले अरब इनको इस्तेमाल करते हैं, और यह जाहिर सी बात है कि अहले अरब हरूफ को बगैर जम्मे जमीमा के इस्तेमाल नहीं करते। वला यबउदु, और यह बात भी बाईद नहीं है, अयु काला कि यूं कहा जाए कि अल मुरादु बि इतलाकिल अल्फाज़ी अयस्तामिलहा अहलुल लिसान फी मुहावरातिहिम व बयान मकासिदिहिम, कि अल्फाज के इतलाक से मुराद यह है कि उसको इस्तेमाल करते हो अहले जुबान, फी मुहावरातिहिम अपने मुहावरात में यानी अपनी बातचीत में, वह बयान मकासिदिहिम और अपने अपने मकासिद के लिए, जिस तरह अपनी गुफ्तगू अपनी बातचीत में और अपने मकासिद के लिए जिस तरह इस्तेमाल करते हो, वो वाला इतलाक मुराद है। और वो तो जाहिर सी बात है कि हर्फ जो है वो बगैर जम्मे जमीमा के वो इस्तेमाल नहीं करते। तो इस सूरत में फला हाजता इला एतबार कैदिन जायदिन, एक जायद कैद का एतबार करने की जरूरत नहीं। इस सूरत में जायद कैद का एतबार करने की जरूरत नहीं। यह दूसरा जवाब दिया था। पहला जवाब क्या था? पहला जवाब क्या कि इतलाक से कौन सा इतलाक मुराद? इतलाक सही मुराद है, यानी एक जायद कैद सही का भी आपको यहां एतबार करना पड़ेगा, उसको भी मानना पड़ेगा। जबकि दूसरा जवाब यह दिया कि भाई जायद कैद के मानने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि इतलाक जो बोला है, जो इतलाक लफ्ज आया, इससे मुराद वो वाला इतलाक है जो अहले लिसान अपने गुफ्तगू बातचीत और अपने मकासिद में जिस तरह इतलाक करते हैं वो मुराद है, और उसमें भी हर्फ बिला जम्मे जमीमा के इस्तेमाल नहीं होता। तो जब ये वाला इतलाक मुराद ले लें तो अब सहीहन वाली जायद कैद का एतबार करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ? कौन सा इतलाक मुराद लें? जो अहले जिस तरह अहले जुबान इस्तेमाल करते हैं। भाई बात अच्छी तरह समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।